ओम शांति। आज का टॉपिक है हलचल में अचल। ड्रामा में रोज कुछ न कुछ सीन तो हम सबको सबके सामने आता है, लेकिन जहां हम लोग रहते हैं वहां पर अर्थक्वेक आता है बिना बताए। कभी कभी रोज भी आ सकता है, कभी रात को भी आ सकता है, कभी अमृत वेले भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तो हम कैसे अचल रहें, या कोई भी और प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसमें भी अचल कैसे रहें। मैंने तो एक टेस्ट तो पार कर लिया है अर्थक्वेक का प्रैक्टिकल, क्योंकि बहुत समय पहले वहां आया था और मैं वहीं थी, और किस प्रकार से ये सीन इतना आसान तो नहीं होता है, होता तो भयानक सीन ही है। लेकिन उस समय जब हम बाबा की याद में होते हैं, या बहुत शांतमय स्थिति होती है, या मन बहुत क्लियर होता है, तो उस समय हम टचिंग बाबा की प्राप्त कर सकते हैं, साथ में ठीक निर्णय ले सकते हैं। ये मेरा अनुभव रहा, क्योंकि 1995 में हुआ था ना वहां पर, तो उस समय मैं अकेली थी बाबा के घर में, तो योग कर रहे थे 5:45 सुबह का टाइम, तो पहली बार हुआ था। लेकिन मैंने ये देखा कि जब ये हो रहा है तो मैंने भी बाबा को बताया हो रहा है, क्योंकि बाबा तो रोज मुरली में कहते हैं तैयार रहो तैयार रहो, लेकिन जब आता है उस समय तैयार हूं या नहीं हूं, क्योंकि इंसान घबरा भी सकता है, डर भी सकता है, नर्वस भी हो सकता है, या उस समय भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, जापान जैसे देश में वो लोग टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते हैं, है ना, कि कैसे जब भूचाल आए तो कैसे अपने को संभालना है। छोटे छोटे बच्चे भी पहले जब स्कूल जाते हैं सबको ट्रेनिंग होती है, वो बैकपैक भी तैयार होता है, उसमें क्या क्या डाल के रखना होता है, ये सब कुछ फिजिकल तैयारी है ही है। हम लोग भी सेंटरों पर तैयारी रहते हैं, वहां पर पानी भी 5 साल का बना हुआ है, 5 साल तक पीते रहो, ऐसा अच्छा पानी उन्होंने तैयार कर दिया है, स्टॉक में रख सकते हैं, और उन्होंने चावल के पैकेट ऐसे बना के रखे हैं तैयार, आप थोड़ा सा भी उसमें गर्म पानी डालो खाना बन जाए, चावल बन जाए, ऐसे स्थूल रूप से सब कुछ तैयार है वहां पर। लेकिन हमारे पास सब कुछ तैयार भी हो, लेकिन उस समय मन स्थिर रहे, मैं उसकी बात करना चाहती हूँ। तो 3 बातें हैं इसमें। पहला है मन स्थिर रखने के लिए, ऐसे जल्दी स्थिर नहीं होगा उस समय, उसके लिए रोज अभ्यास चाहिए। पहला तो अभ्यास, मैंने ये देखा जितनी कम चीजें संग्रह करो उतना अच्छा है, आप सहमत हैं इस बात से? जितनी कम चीजें उतना अच्छा, नहीं तो उसके लिए बहुत स्थान चाहिए। यदि 50 जूते हैं, इतनी सारी चीजें हैं, संभालना, उसको साफ रखना, बुद्धि जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले तो मैंने ये रियलाइज किया कि जितना हो सके कम चीजें हों, ताकि बुद्धि उसमें इतनी नहीं जाए, जो जरूरत की हो वो हो। दूसरा प्रैक्टिकल ये मैंने अनुभव किया कि सारे दिन में हम अपने ऊपर भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करें, प्रयोग करें। हाँ, कभी भी कोई बात आती है, कोई जोर से बोलता है, या कुछ काम आपका नहीं हुआ, उस समय आपका मन कैसे रिएक्ट करता है, स्थिर रूप से या अस्थिर रूप से, जल्दी जल्दी उत्तर देता है या शांति से सोच के धैर्यवत उत्तर देता है। ये हमारी रोज का अभ्यास होगा तो उस समय भी ये काम आता है। तो मन स्थिर रहे, अचल रहे, उसके लिए रोज अभ्यास करना है। वो है अभ्यास अपने मन को धैर्यवत और शांत चित्त रखना, सारे दिन की बातों में, सारे दिन की परिस्थितियों में, सारे दिन की सिचुएशंस में हम हलचल में नहीं आते। उसकी निशानी क्या है हम हलचल में नहीं आते सारे दिन में? उसकी निशानी है कि जब ड्रामा का सीन पार हो जाता है, यदि हम उस सीन को सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब सीन तो चला गया लेकिन हम हलचल में अभी भी हैं। समझ रहे हैं इस बात को? यदि हमारा मन सीन जाने के बाद भी सोच रहा है, हमारा मन उसी बात को, उसी सीन को, जो जिसने जो बोला था वो बात मैं मन में दोहरा रही हूँ और किसी को बता रही हूँ, तो इसका मतलब हमारा मन अभी तक स्थिर नहीं हुआ है, थोड़ा हलचल में है, डिस्टर्बेंस में है, तभी तो हम वो वाली बात सोच रहे हैं। नहीं तो सीन चला गया ड्रामा का, फिर हम उसके लिए क्यों सोचें? तो यदि ड्रामा के सीन का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है तो इसका मतलब योग कम हुआ है ना। तो योग का मतलब यही है कि हम साक्षी होकर के उस सीन को देखें। तो दूसरा ये अभ्यास हम करें अचल रहने के लिए हलचल की स्थिति में, वो ये है कि हम अपने मन को देखते रहें कि जो भी सीन बीत गया है उस पर मेरा बार बार जो है विचार दोहराना, उसी बात को सोचना या बोलना वो तो नहीं चल रहा है। यदि चल रहा है तो उसको हम कम करते चलें, ऐसा ना हो, क्योंकि वो जब आती हैं प्राकृतिक आपदाएं या हलचल की दूसरी बातें आती हैं तो हमारा मन एक बात से दब जाएगा, फिर दूसरी चीज आ जाएगी, फिर उससे दब जाएगा, फिर तीसरी आ जाएगी, तो टेंशन में चला जाएगा, स्ट्रेस में चला जाएगा। इसलिए दूसरा अभ्यास हम अचल रहने का यही करें कि हमारा मन जो है सदा उस सीन से दूर है। तो एक बार हम लोगों को दादी ने एक बात बताई थी कि जो भी कोई बात होती है वो फिर 5000 वर्ष के बाद आती है, लेकिन हमारा मन ये जो ज्ञान यूज करे कि ये जो सीन आया है हमारे पास फिर दोबारा कब आएगा, 5000 वर्ष के बाद, लेकिन हम उसको नहीं छोड़ते हैं मन से या बोलते हैं, तो इसका मतलब अभी लेट गो नहीं किया है, उसको हमने छोड़ा नहीं है। तो अचल रहने के लिए ये अभ्यास जरूरी है सारे दिन में कि हम अपने मन में प्रेजेंट वर्तमान समय जो भी सीन हमारे सामने है उसमें हम पूरा ध्यान दें एकाग्र होकर के, लेकिन हम अपने मन को पिछले सीन में नहीं ले जाएं। जो हो गया सो हो गया, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। इतना पॉजिटिव रहना, इतना पॉजिटिव रूप में सोचना, तभी जाकर के हम छूट सकते हैं इस प्रभाव से। नहीं तो मन में थोड़ा सा भी क्या क्यों, कल भी बाबा ने वरदान में कहा था, मन के संकल्प में भी यदि हलचल है, वो कौन सा शब्द बताए, क्या और क्यों, यदि मन में क्या और क्यों चल रहा है तो इसका मतलब हलचल में है हम, लेकिन नहीं चल रहा तो अचल रहे, स्थिर हैं, स्टेबल हैं। तीसरी बात है हमको अचल रहने के लिए अपने मन में, वो है डिसिप्लिन। जितना हमारे जीवन में डिसिप्लिन होगा, नियम होगा, संयम होगा, उतना हम अचल रहेंगे, स्थिर रहेंगे। नहीं तो यदि कुछ भी जीवन में नियम नहीं होता है, संयम नहीं होता है, तो हम जैसे कोई बाढ़ आए उसको भी सीमा नहीं दी जाए तो डेंजर है या नहीं? तो ऐसे ही हमारे मन के विचार जो हैं वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, उसको भी हम नियम दें। कौन सा नियम बाबा ने हमको दिया हुआ है? यदि मन इधर उधर की बात सोचे उसको वहां से हटाकर कहाँ लगाना है? दो ही बातों में, कौन सी? याद और सेवा। हाँ, या तो आपको अपने मन में बाबा को याद कर लो, उससे आपको उन्नति होगी, इनकम होगी, प्राप्ति होगी, समय सफल होगा, या आप सेवा में लग जाओ मन और तन से, तो जो बात आपको तंग कर रही है वो खत्म हो जाएगी। हाँ, कहते हैं ना, कि कबीर ने भी कहा था, हे मन कभी खाली ना बैठा कर, पजामा फाड़ के भी सिया कर। मतलब कभी अपने मन को खाली नहीं होने दो, हमेशा अपने मन को या तो सेवा में या याद में बिजी करो। तो हलचल किन किन बातों से हमारे जीवन में आती है वो हम नोट करें। संबंधों में आती है, या जब हमारा शरीर में कुछ दुख है, दर्द है, पेन है, कोई बीमारी है, उससे हम हलचल में आते हैं, या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है हमने सोचा नहीं था, तैयार नहीं हुए थे, उसमें हलचल में आते हैं। तो ये हम अपने को अपने में ही क्लियर कर लें कि मेरा मन कहाँ हलचल में आता है, डिस्टरबेंस में चला जाता है। ये हर एक को अपना पता होना चाहिए, है ना। कई कई आत्माएं होती हैं, उनको कुछ परवाह नहीं है, संबंध में नहीं आते हैं हलचल में, इजी रहते हैं, सरल रहते हैं। कई हैं थोड़ी सी भी कोई बात संबंध में आ जाती है तो मन लड़ाई में चला जाता है, या रिएक्शन में चला जाता है, या दुख में चला जाता है, या पास्ट में चला जाता है। ये हमको अपने आप को देखना होगा कि मेरा मन कहाँ कहाँ चला जाता है। तो पास्ट में तो नहीं गया मेरा मन, या किसी की उधेड़ बुन में तो नहीं चला गया मेरा मन। क्योंकि संगम युग में जो बाबा ने हमको ये समय दिया है, किस लिए दिया है? सफल करने के लिए। यदि संगम युग में हम बाबा का दिया हुआ ये जो समय है, और जो हमारे पास एक बहुत सुंदर शक्ति है, संकल्प शक्ति, उसको हम सफल करें, तो हम पहले ये देखें जो ब्रह्मा बाबा थे वो सारे दुनिया में विशेष क्यों बने थे। आपको मालूम है क्यों विशेष बने? ब्रह्मा बाबा इस दुनिया में रह करके भी, इस शरीर में भी रह करके, उनका जो मन था वो सबसे ज्यादा शिव बाबा के संबंध में था। और इस दुनिया में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए भी उनका जो मन था अव्यक्त था, एंजल है, अव्यक्त मन। कभी भी दुनिया की बातें, इधर उधर की बातें, बिजनेस की बातें, किसी भी बातों में उसका मन नहीं चला। इसलिए उसका मन जो था अव्यक्त एंजल, इसलिए वो विशेष कहलाए ब्रह्मा बाबा। तो हम भी हलचल दुनिया में तो रहेगी, संबंधों में भी आएगी, ये शरीर भी कभी कभी आपको हलचल में लाएगा, कभी ठीक है कभी नहीं ठीक है। लेकिन जो हमारा सारा दिन का अभ्यास चलता रहे, वो चौथी बात ये है कि हम अव्यक्त और एंजल। एंजल का मतलब है फरिश्ता, फरिश्ते का मतलब है कि जैसे अभी आप यहाँ बैठे हैं, या आप चल रहे हैं, या आप कहीं भी जा रहे हैं, तो आप अपने मन में संकल्प करो कि मैं फरिश्ता हूँ, और फरिश्ता जो होता है वो लाइट और माइट ये फैलाता है ना। फरिश्ते का अर्थ है लाइट, एकदम हल्कापन, वो लाइट भी बिखेर रहा है और माइट भी। और अव्यक्त उसको कहते हैं जो व्यक्त की बातों में नहीं है। व्यक्त की बातें मालूम है ना कौन सी होती हैं? दुनियादारी, समाचार, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पैसा यहाँ से उधार लेना है, इसको देना है, पता नहीं मन क्या क्या सोचता है, तो वो व्यक्त है। तो इसलिए हम अपने मन को व्यक्त में ना ले जाकर के अव्यक्त में रखें। उसके लिए ये प्रैक्टिस मैंने देखी है कि वो जरूरी होती है। आज भी बाबा ने कहा, आज भी दादी बता रहे थे, कम बोलो और मीठा बोलो, और तीसरा कौन सा? धीरे। तो ये बहुत आपको मदद करता है, क्योंकि अव्यक्त स्थिति में बहुत शांति है, और इस आवाज की दुनिया से ऊपर वाली स्थिति है, तो उस स्थिति में हमको अचलपन, स्थिरता रहती है। तो उसके लिए ये पहला हमको अभ्यास है योगी जीवन का, सारे दिन में, कि हम जितना हो सके आवाज में कम आए। बाबा ने आपको याद है दो हफ्ते पहले कहा था कि 10 शब्द भी किसी को बताने हो तो उसके बदले कितने शब्द में बताओ बात? 2 शब्दों में। मतलब हमारा मन जो 10 शब्द सोच रहा था वो 10 के बदले आपको 2 शब्द ऐसे बताने हैं कि जिसको बताने उसको समझ भी आ जाए और ज्यादा बोलने की जरूरत ना पड़े, तो कितना टाइम बच जाएगा हमारा। वो जो समय हमारा बच जाता है उसमें हम वो शांति का, अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो हलचल है दुनिया में तो रहेगी, हम सब भारत में रहते हैं, चलो विदेश में वहां पर सिस्टम अच्छे हैं, लोग डिसिप्लिन है, हार्ड वर्क है वहां पर, तो कम से कम उनमें उसका समय इतना व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन भारत में तो लाइनों में लगना पड़ता है, नहीं वहां भी समय चला जाता है, तो कोई लाइन तोड़ रहा है, कोई आगे आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो डिसिप्लिन नहीं रहता है। लेकिन हम अपने डिसिप्लिन में रहें, अपने मन के डिसिप्लिन में और शारीरिक रूप से, स्थूल रूप से भी डिसिप्लिन। तो मैंने देखा कि हम लोग जब विदेश में होते हैं तो एक जैसे गीत भी चला था, एक बाबा का ही सहारा रहता है और उस बाबा की याद में ही हम ठीक सोच सकते हैं, क्योंकि टेलीफोन भी काम नहीं करते हैं। ऐसे समय होता है जब प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, कुछ भी होता है तो टेलीफोन भी काम नहीं करते हैं। जब हमारे सामने भी अर्थक्वेक हुआ था, टेलीफोन ही नहीं था, कुछ भी नहीं था हाथ में, लेकिन उस समय हम बाबा को याद किया और बाबा से जो हमको डायरेक्शन मिलने हैं वही मिलेंगे। तो इसका मतलब इतना मन जो है डर से ऊपर उठा रहे, इसका मतलब सोल कॉन्शियस में रहे, है ना, आत्मिक स्थिति में रहे। इतना हम अभ्यास करते चले सारे दिन में कि मन में जरा भी फियर ना हो, डर ना हो। यदि डर होता है, मैंने देखा कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ भी नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब मैं जापान में थी, जब अर्थक्वेक आया, तो मैंने ये देखा कि उस समय क्या क्या करना है, एकदम फास्ट डायरेक्शन बाबा से लिए, बाबा ये हो रहा है मुझे क्या क्या करना है, ठीक ठीक प्रश्न बाबा से भी पूछो तो ठीक ठीक उत्तर आएगा। हाय बाबा मैं यहाँ चले जाऊं, मैं बाबा यहाँ चले जाऊं, डरना भी नहीं है, कंफ्यूज भी नहीं होना है, नर्वस भी नहीं होना है, घबराना भी नहीं है, लेकिन ठीक, हाँ ठीक डायरेक्शन लेना है बाबा से और बाबा की याद में रह करके सोचना है कि अभी मुझे क्या क्या करना है। तो उस समय मैंने देखा कि जब मन एकदम स्पष्ट था तो डर नहीं लगा और भी हम औरों की मदद कर पाए। मैंने देखा उस समय मेरे साथ कई लोग थे, वो सभी डर रहे थे और सभी ने कहा ओ मैं तो गुरु पुराण को याद कर रही हूँ, मुझे तो मन स्थिर नहीं हो रहा। किसी ने कहा मैं मंत्र रिपीट कर रही हूँ, मन स्थिर नहीं हो रहा। आप कैसे स्थिर हो, आप क्यों शांत हो, आप कैसे ये काम रह सकते हो। उनको उस समय हम मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम तो ना कोई मंत्र उस समय गा रहे हैं अपने मन में, ना किसी को याद कर, हम तो मन में बाबा की याद में, बाबा की जो याद है, वाइब्रेशन है, जो बाबा की एनर्जी है इतनी शांत इतनी क्लियर, उसको हमको होल्ड करना होता है ताकि हमारा भी मन इधर उधर फिसले नहीं। तो मैंने देखा कि जब मन जो है शांत और क्लियर है तो उस समय हम उनको डायरेक्शन दे सकते हैं। तो मेरे साथ जो लोग थे उस समय, उन्होंने कहा हमको आप सिखाओ कि कैसे मेडिटेशन करना होता है, हैं? उस समय जबकि इतनी हलचल हो रही है और उस समय हमको भी अचल रह करके उनको मन को उनको उठाना है ना, उनके मन को भी, नहीं तो वो तो चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, डर में हैं, क्या होगा अभी, कहाँ जाना है, ये वाले प्रश्नों में हैं। और हम बाबा के बच्चे, क्योंकि मुरलियों द्वारा रोज बाबा तैयार कर रहे हैं ना हमको कि कभी भी कुछ हो सकता है। तैयार है आप सभी, कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी कोई भी क्षण हो सकता है। उस समय हम ये नहीं कह सकते बाबा को, बाबा आपने थोड़ी देर पहले बता दिया था तो अच्छा था। मैंने देखा जापान में जब सुनामी आई थी ना कुछ साल पहले मार्च में, खाली आधा घंटा पहले उन्होंने बताया था, हैं? लेकिन सुनामी समझते हैं ना, वो जो बहाव होता है ना पानी का,
वो बहुत ऊंचा है, सारा गांव का गांव डूब जाता है उसमें। तो मैंने दो तीन लोगों से पूछा था कि आप लोगों ने कैसे लिया ये, तो हमारे कुछ ब्राह्मण हैं, उनके रिश्तेदार थे, उनके रिश्तेदार का सब चला गया, घर चला गया, सब परिवार चला गया। तो जो अपने ब्राह्मण थे जापान में, उन्होंने जाकर उनकी सेवा की, क्योंकि उस समय मदद करना हमारा फर्ज है। तो मैंने ये देखा कि लोग, जो बूढ़े लोग थे, उनसे पूछा गया कि आप निकलो यहाँ से, आधे घंटे में सुनामी आने वाली है। वो जो बूढ़े लोग थे ना, उनकी पता है क्या प्रॉब्लम थी, वो कहते हम तो नहीं जाएंगे यहाँ से, हम तो सारी जिंदगी यहाँ रहे हैं, हम तो जन्मे यहाँ, पले यहाँ, बिजनेस यहाँ। पता है उनका क्या हुआ, अटैचमेंट हो गया ना घर से, तो सुनामी आई, सब बह गया, सब चले गए, क्योंकि अटैचमेंट कितना नुकसानकारक है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना, किसी भी चीज से हाँ अटैचमेंट नहीं रखनी, क्योंकि वो अंत के समय कारण बनेगी हम लोगों का, हाँ डेथ का है, कुछ भी कारण बन सकती है अटैचमेंट। तो इसलिए बाबा कहते हैं, जितना आप कम चीजें रखो उतना फायदा है, और जहां रहो ये सोचो ये मेरा नहीं है, हम यूज कर सकते हैं लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये मेरा है। मेरा माना अटैचमेंट, लेकिन हाँ यूज कर सकते हैं, ये कुर्सी है यूज करो, घर है यूज करो, चीजें हैं यूज करो, लेकिन अंदर ही अंदर ये देखते रहो कि मेरा इस पर डिपेंडेंसी, निर्भर तो नहीं हूं, ये आज है कल नहीं है, यदि नहीं है तो क्या हम रह सकते हैं। हाँ, तो धीरे धीरे ये होता है ना, इंसान का नेचर होता है, जिस चीज को हम यूज करते हैं, जहां रहते हैं, धीरे धीरे उस चीज में, उस स्थान से में हम निर्भर होना शुरू कर देते हैं। तो फिर धीरे धीरे इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं, इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते हम वो चीज, तो अटैचमेंट हो जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि यूज करो लेकिन अटैचमेंट में नहीं आओ, मोह में नहीं रखो, मेरेपन में नहीं आओ। ये कितना अच्छा सत्यता का ज्ञान बाबा बता रहे हैं, वो बाबा कितने मर्सीफुल हैं, रहम दिल, कि पहले से हमको तैयार कर रहे हैं कि यही जो अंदर की सूक्ष्म अटैचमेंट ही कारण बनेगी है। जहां भी हम हैं, हमको क्या पता 5000 वर्ष पहले कैसे हम लोगों ने महाभारत, जो इतनी बड़ी लड़ाई लगेगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, क्या नहीं होगा, उस समय हम कहां होंगे, किसी को पता है? सड़क पर होंगे, किचन में होंगे, घर में होंगे, कहां होंगे मालूम है? किसी को नहीं मालूम, लेकिन कहीं भी होंगे हम, लेकिन उस समय हम इतना बाबा की याद में रहें कि स्थिर होकर के, शांत प्रिय होकर के, बाबा की याद में हम ठीक निर्णय लें। हमको एक बहन ने बताया था, जापान में जब हिरोशिमा में बम पड़ा था, वो बहन जो है उसने एक बहुत अच्छी बात बताई, कहा कि मैंने ऐसे ही किया, बस एकदम बम पड़ा, मतलब इतने आधा सेकंड ऐसे किया बम, और फिर उसके बाद उसका शरीर तो ठीक नहीं रहा है। तो कुछ भी सेकंड में कुछ भी हो सकता है। तो हलचल है लेकिन मैं अचल हूं, अचल का मतलब यही है, आपके पास कोई चीज हो वो स्थिरता नहीं है, हलचल चल रही है, प्रॉब्लम्स हैं, लोग शोर मचा रहे होंगे, कोई कुछ कह रहा होगा, कोई लोग भाग रहे होंगे, क्या क्या सीन होगा हमारे सामने है, जो भी होगा प्राकृतिक आपदाओं के टाइम, लेकिन अचल का मतलब है कि हम घबराए हुए नहीं हैं, ये आप लिख लो, स्थिर हैं और एकदम अचल हैं। ये मन, चीजों की बात मैं नहीं कह रही, चीजें अपने आप आ जाएंगी उसकी हमको चिंता नहीं है, लेकिन मन को उस समय अचल रखना है, स्थिर रखना है, घबराना नहीं है। तो उसके लिए पांचवी प्रैक्टिस हमको ये करनी है कि हर घंटे में, हर घंटे में हम देखें कि जो हमारा मन के विचार है उसकी स्पीड क्या है, स्पीड समझते हैं, उसकी गति क्या है, कहाँ जा रहा है मेरा मन बार बार, कोई आकर्षण में तो नहीं फंसा हुआ हा? क्योंकि यदि मन में ये कमजोरी है, कोई ना कोई आकर्षण में फंस जाता है, तो वहां मन बैठा रहेगा ना उस आकर्षण में। आकर्षण समझते हैं, खाने पीने का आकर्षण होता है ना, पानी पूरी खाएं, समोसा खाएं, या कहां चीजें इकट्ठी करें, टाइम है चलो शॉपिंग चले जाएं, है ना, कहां कोई आकर्षण है हम लोगों को, वो हमको कभी भी धोखा दे सकता है, दे सकता है या नहीं। तो इसीलिए, क्योंकि जो हमारे मन है, जो थॉट है, वो आकर्षण में रहेगा तो इसका मतलब डिजायर्स आ जाएंगे उधर, तृष्णा भी आ सकती है, इच्छाएं भी आ सकती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख किस में है, दो चीजों में। कौन सी दो चीजों में? दुनियादारी चीजों में नहीं, चीजों को इकट्ठा करने में नहीं, ये भौतिक दुनिया में नहीं। कौन सी दुनिया में हमको सुख मिल सकता है? वो है दो। कौन से? एक है बाबा की याद और दूसरा है बाबा से मिली हुई अष्ट शक्तियां। अष्ट शक्तियां, क्योंकि जब आठ शक्तियां स्पिरिचुअल पावर जो बाबा से मिलती है हमको योग द्वारा, कौन कौन सी रिवाइज करो, कौन कौन सी? निर्णय करने की शक्ति, दूसरी सामना करने की शक्ति, तीसरी परखने की शक्ति, चौथी सहयोग करने की शक्ति, पांचवी सहन करने की शक्ति, छठा संभालने की शक्ति, सातवां समेटने की, परखने की, है ना। ये जो आठ शक्तियां हैं और बाबा की याद है, इससे सबसे ज्यादा सुख हमको मिलता है। तो ये हमारी जो शक्तियां हैं ये बढ़ती रहें, उसके लिए हमको सारा दिन सबसे जास्ती शक्ति कौन सी यूज कर सकते हैं हम सारे दिन में, मालूम है? परखने की। हाँ, पहला तो परखना ही पड़े ना। हाँ, और मान लो चेस्ट में पेन हो रहा है और हम कहीं योग करना है, योग करना, उस समय योग थोड़ी काम आएगा, उसमें डॉक्टर को जाना पड़ेगा ना। हाँ, सहन शक्ति भी बहुत जरूरी है, परखना भी जरूरी है, हाँ समाना भी जरूरी है, सारी शक्तियां जरूरी हैं। लेकिन सबसे मैंने देखा है कि जो शक्ति बहुत जरूरी होती है वो होती है डिसर्नमेंट, परखने की शक्ति। उसमें क्या होता है कि आपके सामने कोई परिस्थिति आ गई, शरीर में दर्द हो रहा है, कुछ परखना पड़ेगा ना, क्या करना है, दवाई लेनी है नहीं लेनी है, है? जाना है डॉक्टर के पास नहीं जाना है, परखना पड़ता है ना। या संबंध में हलचल आई है तो परखना पड़ेगा ना, इस समय शांत रहना है, बाबा की याद में रहना है, हाँ बैठ के इससे बात करनी है, बात स्पष्ट करनी है, क्या करना है, परखना पड़ेगा ना, तो उसके बाद निर्णय ले सकते हैं। तो परखने की शक्ति को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन परखने की शक्ति तब आगे बढ़ेगी जितना हमारा जो मन है, जो थॉट्स हैं, वो बहुत बहुत क्लियर रहेंगे और बाबा की याद वाले होंगे। तो क्योंकि बाबा के पास तो सब प्रकार की सॉल्यूशंस हैं, सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान है बाबा के पास, और सभी प्रश्नों का उत्तर है बाबा के पास, और सभी प्रकार की जो भी प्रॉब्लम्स दुनिया में है उसके सभी समाधान शिव बाबा के पास हैं। तो इसलिए हमको करना ही पड़ेगा शिव बाबा को याद, है? दुनिया में तो लोग गूगल कर लेते हैं, हमको कहाँ जाना पड़ेगा? हाँ, शांति में बैठ करके बाबा को अपने थॉट देना है, फिर शांति में बैठना है और बाबा से अच्छा थॉट लेना है। तो जितना हम वो करेंगे प्रैक्टिस, उतना हमारा मन और जो भी आने वाली समस्याएं हैं वो सुलझलती जाएंगी। यदि हम नहीं कर पा रहे हैं ये काम अपने मन और बुद्धि द्वारा, तो हमेशा ही उलझे रहेंगे। उलझे समझते हैं, हमेशा ही हमारा मन कंफ्यूज होगा, है ना। कंफ्यूज की निशानी है क्या? यदि हमारा मन बार बार कंफ्यूज हो रहा है, उसका मतलब क्या मतलब हुआ? उसका मतलब जैसे बहुत पैसा हो तो सिक्योरिटी रहती है ना मन में, अब पैसा है आराम से जीवन चला लेंगे, नहीं होगा तो क्या होगा मन को? इनसिक्योरिटी और कंफ्यूजन है। यदि हमारा मन बार बार उलझ जाता है हर बात में, तो इसका मतलब कमाई कम है। किस चीज की कमाई कम है? बाबा की याद की, ज्ञान और योग दोनों की, लेकिन मेन बात है बाबा की याद की। तो याद होगी तभी तो जाकर के हमारा मन जो है ज्ञान को समझ पाएगा ना, तो मन क्लियर रहेगा ना। तो इसलिए हर घंटे में हम देखें कि हमारे मन के जो विचार है ना, वो कौन सी स्पीड से चलते हैं, उसकी स्पीड कैसी है। बहुत फास्ट स्पीड होगी, कार बहुत तेज जाती है तो क्या होता है? एक्सीडेंट, नुकसान। तो ऐसे ही हमारे मन के जो विचार हैं, वो बहुत फास्ट स्पीड से जाएंगे तो क्या होगा? स्पिरिचुअल एक्सीडेंट। हाँ, यदि हम दुख में आ जाएंगे, या हम किसी को दुख दे देंगे, या हम धोखे में आ जाएंगे, या हम किसी को धोखा दे देंगे, यदि यही काम करते रहे तो एक्सीडेंट कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, ना दुख दो और ना धोखे में आओ। दुख भी नहीं देना है और दुख लेना भी नहीं है। कभी कभी हम दुख नहीं देते हैं, लेकिन दुख ले लेते हैं। दुख क्यों ले लेते हैं मालूम है उसका कारण? उसका कारण है स्वमान की कमी, है ना। स्वमान नहीं है ना तो दुख ले लेते हैं। यदि हम स्वमान में रहें तो कभी दुखी होंगे ही नहीं। कोई चीज ना हो आपके पास तो भी आप करो, आपको बाबा मैं आपका आप मेरे, वो सबसे बढ़िया चीज बाबा तो है ना आपके पास, और कुछ हो ना हो है? वो भी तो स्वमान है ना, कि हम किसके बच्चे हैं? बाबा के। तो वो याद रहेगा तो वो भी तो स्वमान हो जाएगा ना। तो जब हम स्वमान में रहते हैं तो दुख नहीं लेंगे। और दुख देते कैसे हैं? क्यों देते हैं दुख? उसका कारण हमारे अंदर कोई ना कोई अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशंस हैं। वो पूरी नहीं होती हैं तो निराश हो जाते हैं, होते हैं या नहीं? तो इसीलिए फिर दुख ले लेते हैं। और कोई बात थोड़ी सी कोई बोल देगा, हम अपने दिल में रख लेंगे, उसको याद करते रहेंगे, दूसरों को सुनाते रहेंगे, याद करते रहेंगे, उसको सुनाते रहेंगे, मन खराब रहेगा, फीलिंग्स खराब हो जाएंगी, इसका मतलब हम दुख में हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी फीलिंग्स को अच्छा बना के रखें। ये भी अचल होने की निशानी है संबंधों में, कि संबंध में तो हलचल आते रहेंगे। कोई आज आपको इज्जत देगा, कोई नहीं देगा। आज कोई कुर्सी पर बिठाएगा, कल कोई कहेगा नहीं बैठो। कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारी फीलिंग्स एक जैसे रहें। उसका आधार है हमारे मन के विचार। जितना आप अच्छा सोचेंगे उतना आप अच्छा फील करेंगे। यदि हम खराब सोचेंगे तो खराब फील करेंगे। हाँ, ये है कि तीन प्रकार के पुरुषार्थी हैं। बाबा कहते हैं कितने प्रकार के पुरुषार्थी हैं? तीन। एक है उत्तम, दूसरा है मध्यम, तीसरा है कनिष्ठ। तो ये तो समझ के चलो। बाबा कहते हैं कोई महारथी, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादे। तो हम एक्सपेक्ट नहीं करें कि वो इतने साल से ज्ञान में है, वो ऐसा करना चाहिए। नहीं, हर एक अपना पुरुषार्थ है। सारे पुरुषार्थी, लेकिन कोई उत्तम है, कोई मध्यम, कोई कनिष्ठ। तो हम उनके पुरुषार्थ को देखें कि जो जितना पुरुषार्थ कर रहा है तो वो भी बाबा का बच्चा है, तो वो भी पुरुषार्थी, लेकिन मैं अपेक्षा ना करूं, क्योंकि कर रहा है ना वो पुरुषार्थ है। कनिष्ठ है तो मध्यम में आ जाएगा, मध्यम है तो उत्तम में चला जाएगा। तो हम क्यों अपेक्षा करते हैं? तो इसलिए हम ये सोच के ही रहे, सभी बाबा के बच्चे पुरुषार्थी बच्चे हैं, सभी कर रहे हैं पुरुषार्थ, कोई नहीं रहा हुआ बिना पुरुषार्थ के। तभी तो ब्राह्मण बने आप सब, उठते हैं ना अमृत वेले, वो भी तो पुरुषार्थ है ना। मुरली सुनते हैं वो भी पुरुषार्थ, मुरली को ध्यान में रखना वो भी पुरुषार्थ, मुरली के ज्ञान को यूज करना वो भी पुरुषार्थ, पुरुषार्थ तो सारा दिन चलता है, तो इसलिए सब भी पुरुषार्थी हैं। तो सबके लिए मेरे मन में अच्छी फीलिंग्स रहें कि सभी आत्माएं जो हैं पुरुषार्थी हैं, तपस्वी हैं, ब्राह्मण हैं, बाबा के बच्चे हैं। इतने ऊंचा विजन रखेंगे अपने संबंधों में, तो संबंधों में हलचल आते हुए भी हम अचल रहेंगे, क्योंकि भूल जाते हैं हम कई बार कि ये ब्राह्मण आत्मा है, इसको किसने चुना है, हैं? किसने चुना है? बाबा ने, और किसी ने तो नहीं, कमेटी ने सुना, कोई कमेटी तो नहीं बनी हुई यहाँ पर किसको चुनो, हैं? दुनिया में तो कमेटी होती है ना, हैं? यहाँ तो कोई कमेटी नहीं, कौन, किसने आपको जागृति दिलाई ब्राह्मण संस्कारों की? बाबा ने, तो बाबा ने ही चुना है ना, और हरेक को चुना है, और उसकी तो देखो कितना काम चल रहा है, जोर शोर से चल रहा है बाबा का काम, हजारों लाखों दुनिया में तो कितने ऑफिस बनाते रहेंगे काम करने के लिए, बाबा के पास ऑफिस है क्या परम धाम में? ये कैसे बाबा काम कराते हैं, हैं? कोई उसके पास गैजेट्स नहीं है, इंटरनेट नहीं है, फोन नहीं है, हैं? कैसे बाबा टच करता जा रहा है आत्माओं को, हैं? कैसे बाबा उनके स्वप्न में जाके उनको जागृत कर लेता है, कैसे बाबा उनको ब्राह्मण बना देता है, कैसे ये हो रहा है काम? जैसे सूर्य है, सूर्य की रोशनी से कहां पर जो गीली जमीन होगी वहां सूख जाएगी, सूर्य तो नहीं रोज प्रोग्राम देता है कि आज मैं इसको सुखाने जा रहा हूं या नहीं आना, बोलता क्या सूर्य? कोई प्रोपोगंडा नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कितना आसानी से एकदम गुप्त होके काम चल रहा है। ऐसे बाबा का भी तो काम कितना गुप्त चल रहा है, कितनी आत्माओं को बाबा जागृत कर रहे हैं नए संसार बनाने के लिए, उनका भाग्य जागृत हो जाए, ये आत्माएं जीवन मुक्ति को पाए, ये आत्माओं का उद्धार हो जाए। है तो बाबा बहुत रहम दिल, और किसी की कमजोरी भी नहीं रखते बाबा, हैं? तो बाबा हमको इतना प्यार से पालना दे करके आगे बढ़ाते हैं, तो रोज हम बाबा को इतना याद करते रहें, तो बाबा भी हमारे द्वारा कोई ना कोई आत्माओं को जागृत कराएगा। यदि आप खुश रहेंगे तब जाके लोग आपसे क्या पूछेंगे, आप कैसे खुश रहते हो? यदि मन दुखी है तो लोग पूछेंगे कि आप क्यों दुखी होते हो, कैसे दुखी रहते हो, कोई पूछता है? कोई, सभी क्या पूछते हैं, आप कैसे सुखी रहते हो, पूछते हैं आप लोगों से कोई? या आप कहते हैं नहीं नहीं मैं तो बहुत दुखी हूं, कोई बोलता है ऐसे बाबा का बच्चा? नहीं, क्योंकि हमको अंदर का सुख बाबा ने दिया है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जितना आप अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा फील करेंगे, उतनी अच्छी फीलिंग्स में रहेंगे आप, और खराब सोचेंगे तो फीलिंग्स खराब हो जाएंगी। तो ये जिम्मेवारी किसकी है अच्छा सोचने की? हम सब की है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने मन के द्वारा अच्छे विचार चलाएं। इसलिए हम मुरली सुनते हैं ना रोज बाबा की, तो जितनी हम मुरली को रिवाइज करेंगे, बैठ करके सोचेंगे, उसको बार बार सोचेंगे, वो मेमोरी में चला जाएगा ना, तो इसलिए सारे दिन में फिर कोई बात आएगी तो हम उसी ज्ञान के पॉइंट को यूज करेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं रोज अपने अंदर ज्ञान का खजाना भरता जाए। यदि हमारे अंदर ज्ञान चलता रहता है, उसकी मान लो विचार सागर मंथन हम करते रहते हैं, उसकी निशानी क्या होगी, कितनी भी प्रकार की बातें आएंगी अचल हम रह सकेंगे। मतलब कई बार कई लोग कहते हैं कि इतना नहीं अच्छा सोच पाते, वो अच्छे विचार खत्म हो जाते हैं। क्यों खत्म हो जाते हैं? क्योंकि हम विचार सागर मंथन नहीं करते। या तो आप गीत सुनो बाबा के, या मुरली पढ़ो, और तीसरा विचार सागर मंथन करो, और चौथा स्वदर्शन चक्कर धारी बनकर चक्कर फेराओ। चार काम मन से करते रहो सारे दिन में, कौन कौन से? पहला बाबा की मुरली पढ़ो, दूसरा या तो गीत सुनो, तीसरा विचार सागर मंथन करो, चौथा स्वदर्शन चक्र चलाओ। उसके नीचे तो जाना ही नहीं, उसके नीचे है चिंता, तनाव, दुख। यहां तक अपने मन को और समय को हम यूज करें। थोड़ा भी समय मिले बाबा की मुरली ले लो, कोई भी समय मिले बाबा के गीत चला लो, कोई भी समय मिले अपना विचार सागर मंथन कर लो, और कुछ समय मिले तो स्वदर्शन चक्कर चलाओ। तो ये चार काम चलते रहे अपने मन के द्वारा, तो आपकी कमाई चालू रहेगी, इसलिए खजाना बढ़ता रहेगा, इसलिए खुशी आती रहेगी। क्योंकि खुशी ऐसे नहीं आएगी बिना काम से। दुनिया में भी देखो, लोग बहुत अभ्यास करते हैं, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इतने इतने घंटे बुद्धि का विकास करते हैं, नई नई योजनाएं बनाते हैं, नई नई इन्वेंशन करते हैं, तब जाकर के वो पॉपुलर होते हैं, तब जाकर के उनके पास धन आता है, पॉपुलैरिटी आता है, यश आता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं हम भी ब्राह्मण जीवन, कई बार ऐसा नहीं कि हम ब्राह्मण बन गए तो सब कुछ हो गया, ब्राह्मण जीवन में ही चेंज है, परिवर्तन है। तो इसलिए परिवर्तन हमारा सारा दिन चलता रहे, कितनी भी हलचल हो उसमें भी अचल माना यही कि हमारा मन जो है अपने परिवर्तन के कार्य में जुटा हुआ है। वेस्ट नहीं करना है कुछ भी, ना संकल्प और ना ही टाइम। तो इसलिए रोज सुबह से लेकर रात तक चार बातों पर तो खूब अटेंशन देना है। कौन कौन सी, रिपीट कीजिए। बाबा की मुरली सुन ली वो बात अलग है, फिर पढ़ना अलग है। हाँ, हमने सुन ली, हमारा मन सोचता हमने तो सुन ली नहीं, फिर बैठ के उसको पढ़ना। आजकल तो कितना आसान हो गया, सबके पास हाथ में आ गई है मुरली, हैं? पढ़नी है हमको, बहुत बार पढ़नी है। कितनी विजडम है बाबा के, सारे अच्छे संकल्प तो उसी में ही तो हैं, और अच्छे अच्छे विजडम है, बुद्धि के विकास की बातें हैं उसमें, हमारे परखने की शक्ति अच्छी कैसे बने वहीं से मिलता है ये सब कुछ, कैचिंग पावर अच्छी कैसे बने वो मुरली से ही मिलना है आपको, सब कुछ वहीं से मिलना है आपको। तो इसलिए हम फिर बार बार पढ़ें ताकि हमारी बुद्धि का विकास हो। जितना आपका बुद्धि का विकास होगा उतना आपको उन्नति में मदद मिलेगी। और दूसरा है स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन चक्र का मतलब ये है कि कोई भी हलचल की बात आती है तो उसमें मुझे प्रश्न अपने से ये पूछना है कि मुझे क्या परिवर्तन इसमें करना है। समझ रहे हैं इस बात को? स्वदर्शन चक्र का अर्थ क्या है? कोई हलचल की बात आ गई, किसी ने आपको अपोजिशन कर दिया, सहयोग नहीं दिया, दुख दे दिया, हैं, कुछ भी प्रकार से नेगेटिव कोई हो गया आपके प्रति संबंधों में मान लो, तो उस समय आपको क्या सोचना है कि मुझे अपने अंदर क्या परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन का आधार क्या है? तीन बातें। कौन सी? या तो आप बाबा की विजडम यूज करो, या बाबा के दिए हुए गुण यूज करो, या बाबा की दी हुई अष्ट शक्तियां यूज करो। तीन, बाबा का विजडम, गुण और शक्तियां। आप कहें नहीं नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूं है, लेकिन मैं अंदर से थोड़ा पुरुषार्थ करूंगा कि दुखी नहीं हूं, है? लेकिन ऊपर से हम कह रहे हैं ठीक है लेकिन अंदर से ठीक नहीं है, तो अंदर मीन्स शक्ति नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अंदर की जो शक्ति है, सहन करना, समाना बात को, परखना ठीक, ये शक्तियां हम यूज करें। और गुण, चलो किसी ने थोड़ा सा अधीरे हो गए और आपको कौन सा गुण यूज करना है उस समय? धैर्यता का। कितना आसान है, प्रश्न आया आपके सामने, कोई अधीरे हो गया है और आपको कौन सा गुण यूज करना है उस समय? धैर्यता का। आप पास हो जाएंगे, होंगे या नहीं? यदि कोई अधीरे बन जाता है और मैं भी अधीरे हो गया तो फेल। समझ रहे हैं ना? तो उस समय हम परख सकें कि ये मेरा टेस्ट हो रहा है, तो मुझे अधीरे ना बन करके धैर्यता से काम लेना है। उस समय यही संकल्प करना होता है कि मुझे धैर्यता से काम लेना है। संबंध है ना, क्योंकि कहते हैं संबंध ठीक रखने चाहिए अपने सभी के साथ, तब योग ठीक लगता है। यदि संबंध खराब होते हैं ना, एक भी आत्मा की फीलिंग्स हमारे प्रति अच्छी नहीं होंगी, तो आप बाबा के पास जा रहे हो, योग लगा रहे हो, वो नजदीक चले गए बाबा के पास, वही आत्मा जिसके प्रति फीलिंग अच्छी नहीं है वो आके खड़ी हो जाएगी, जाने ही नहीं देगी आपको बाबा के पास, क्योंकि पहले मेरा जो कर्म का बंधन बना है वो ठीक करो। इसलिए वो फीलिंग्स आपको नीचे ले आएंगी, वो याद आ जाएगा कि इस आत्मा के प्रति वैर भाव है, ईर्ष्या है, ये आपस में हमारा टकराव हो गया था, वो वाली मेमोरी आ जाएगी आपके सामने, आपको जाने ही नहीं देंगे बाबा के पास वो वाली मेमोरी, क्योंकि वो पेंडिंग पड़ा ना कार्मिक अकाउंट, वो ठीक करो पहले है? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने संबंधों में तीन बातें बहुत अच्छी हैं मैंने सीखी हैं, प्यार, शांति, धैर्यता, तीन मैंने देखा है ये तीन बहुत काम आती हैं। आप किसी की बात आप शांति से सुन रहे हैं, प्यार से सुन रहे हैं, धैर्यवत होकर सुन रहे हैं, आधा काम तो हो ही जाता है ना, क्योंकि उनको ये तसल्ली हो जाती है कि आपने मेरी बात सुन ली, उसकी फीलिंग्स अच्छी हो जाती हैं आपके प्रति। हाँ, तो कौन सी तीन बातें याद रखेंगे संबंध में? प्यार, शांति और धैर्यता, बहुत अच्छी चीज है ये। मैंने देखा है कि हम लोग जब ट्रेनिंग करते हैं ना उसमें हम लोगों को ये प्रैक्टिस कराई जाती है, किसी की भी बात आप सुन रहे हैं शांति से सुनो, फिर उसको बताओ ये आपने बोला है ना, हाँ ये बोला है, तो उनको तसल्ली हो गई। हाँ, इसको एक्टिव लिसनिंग कहते हैं कि हमने उसकी बात को ढंग से सुना। और फिर संबंध को अच्छा बनाने के लिए जब हलचल आए तो बाबा कहते हैं संबंध को अच्छा बनाने के लिए कौन सी और बातें हैं। हाँ, किसी का आइडिया है, अच्छा आइडिया है, आपका भी अच्छा आइडिया है, लेकिन वो आइडिया भी टाइम नहीं आया है उसको मैनिफेस्ट करने का है, लेकिन हम उत्तेजित हो जाएं, मेरा ही आइडिया अच्छा है, मेरा ही थॉट अच्छा है, मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो विचार है क्यों नहीं लिया जा रहा, हम मन में लड़ाई उत्पन्न हो जाती है। तो उस समय क्या करेंगे, आइडिया करना छोड़ना नहीं है हमको, हमेशा ही करते रहो आप अच्छे अच्छे आइडिया इस दुनिया में, आज नहीं कल हम नहीं होंगे तो आइडिया तो रहेगा ना दुनिया में, तो वो हो जाएगा मैनिफेस्ट जब उसका टाइम आएगा। हम अपनी क्रिएटिविटी नहीं छोड़ते, आइडियाज तो हमको करना ही है, वो तो आइडिया हम भी चले जाएंगे शरीर छोड़ के, लेकिन आइडिया तो रहेगा ना, तो आइडिया तो कभी भी समय पर मैनिफेस्ट होने वाला है। परंतु यदि उस समय नहीं हो रहा है जिस समय आप चाहते हैं और हम उसको फोर्स करते हैं करने के लिए, तो हलचल में आ जाते हैं संबंध में, है ना, मेरा ही आइडिया ले ना यूज होना चाहिए, सबसे बढ़िया आइडिया है मेरा, है ईगो आ गया है। तो एक भाई था, उसने एक किताब लिखी यज्ञ में, उसकी किताब को 8 साल लग गए उसको छपने में, क्योंकि वो जब आता था कहता था दादी मेरी किताब छापी है या नहीं, 7 साल कहता था मेरी किताब छापी है या नहीं जो मैंने लिखी। जब वो 7 साल के बाद उसने रियलाइज किया कि ये तो मैंने बाबा को अर्पण कर दी, अब बाबा जाने और ड्रामा जाने, फिर उसने नहीं कहा मेरी किताब है, जब उसने बाबा को अर्पण कर दिया तभी वो छपी। समझ रहे हो इस बात को, है ना, कि बाबा को हमको अर्पण करना है ना अपना आइडिया, मेरा जब तक है ये नहीं होने वाला, पूरा मैनिफेस्ट नहीं होगा। जब हमने बाबा को अर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया, डिवनाइज हो गया, वो मेरा तो नहीं रहा ना, वो तो फिर बहुत दुनिया को यूज हो जाएगा ना, उनकी कल्याण के लिए छपेगी, लेकिन वो मेरापन, मैंने लिखी, मैंने बनाई, वो मेरापन निकलना चाहिए, खत्म हो जाए तब ये यूज होगा। तो इसलिए कितनी बातें हमारे जीवन में आती हैं, तो बाबा ये कहते हैं कि हलचल में अचल रहने के लिए जितना हो सके आप नम्रता से चलो, मेरेपन से दूर रहो, संबंधों में पुश नहीं करना है, फोर्स नहीं करना है, लेकिन आइडिया देना भी है, ओपिनियन देना भी है, लेकिन साक्षी होकर के। तो उसमें क्या होता है कि मेरापन नहीं होता है लेकिन भगवान के प्रति अर्पण है। यदि ये इतनी दुनिया को फायदा देगा तो क्यों नहीं मैनिफेस्ट होगा, होगा एक दिन यूज होगा। तो इसलिए हम जितना ये अपने ज्ञान को यूज करते जाएंगे उतना हम हलचल में भी क्या रहेंगे, अचल रहेंगे। समझा आप सभी ने, हाँ कितनी तीन तीन बातें, चार चार बातें आपने लिखी सभी ने, तीन बातें ये याद रखना, चार बातें वो याद रखना, तब जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो संबंधों में तीन कौन सी बातें हैं? प्यार, शांति, धैर्यता। फोर्स पुश नहीं करना है। और संबंध में अचल रहने के लिए आपको आइडिया तो करना ही है, क्रिएट करना ही है, लेकिन फोर्स करके, पुश करके मेरा ही आइडिया माना जाए वो नहीं। उसको डिवनाइज करना है, बाबा को अर्पण कर दो, फिर जो जो ठीक टाइम होगा उस समय ये यूज हो जाएगा। यदि मेरापन है तो यूज नहीं होगा, तो ये इसमें अचल रह सकते हैं। और यदि प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो अचल रहने के लिए तीन बातें कौन सी बताई? एक है, हम जो भी सामने आ रहा है सीन, हम घबराए नहीं, डरे नहीं, कंफ्यूज नहीं हो, लेकिन उस समय बाबा की याद में रह के ठीक परख करके ठीक निर्णय ले लें। उस समय हलचल में नहीं आए, नहीं तो निर्णय ठीक नहीं होगा। और तीसरा ये है कि हमको अपने ब्राह्मण जीवन में सब ब्राह्मणों के साथ रहकर क्या सोचना है, सभी ब्राह्मण बाबा के चुने हुए हैं, ये पक्का है ना? आपने तो नहीं चुना, मैंने भी नहीं चुना, कोई कमेटी नहीं बनी हुई यहाँ जो चुनती है, तो बाबा ही चुनते हैं। तो सभी पुरुषार्थी हैं, कोई उत्तम पुरुषार्थी, कोई मध्यम, कोई कनिष्ठ, हैं सभी पुरुषार्थी, सब रेस कर रहे हैं आगे आने के लिए। लेकिन उन सभी ब्राह्मणों के साथ चलने के लिए कौन से गुण चाहिए हमको, शक्तियां चाहिए? वो है, जितना हम अपने लिए औरों के लिए अच्छा सोचेंगे ब्राह्मणों के लिए, उतना हम अच्छी फीलिंग्स में रहेंगे। और धैर्यता से सुनेंगे और शांति से सुनेंगे तो उतना हम अचल रहेंगे, हलचल में नहीं आएंगे। और मैंने देखा है कि बोल बोल की भी बात निकली ना आज, कैसे बोल बोलना है, कम, धीरे, मीठा। आप प्रैक्टिस करो आज से, कोई भी बात 10 शब्द है उसको भी 2 शब्दों में आप सोचो कैसे इसको बतानी है, और फिर धीरे से बतानी है, और बहुत सार युक्त मीठेपन। तो जितना हम कम आवाज में आएंगे उतना हम अपने मन को ज्यादा संबंध बाबा के साथ जोड़ पाएंगे, और आसान हो जाएगा बाबा के साथ रहना, संबंध में रहना, और बाबा की शक्ति हमको मिलती रहेगी। ओम शांति। हमको हमारे
तुम्हें तुम कहो।